राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अक्टूबर 1993 को सायं लगभग 6 बजे वृंदावन में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
ज्ञान पर बहुत सी गीतिवाएं मिलती है, भक्ति पर भी मिलती है, कर्मयोग पर स्वतंत्र दृष्टि का ऐसी विशेष नहीं मिलती है। तिलक महाराज ने कर्म पर किया विभीषण। उस कर्मयोग के विषय में कई मतभेद है। कर्मयोग के स्वरूप के मानने में श्री शंकराचार्य और तरह मानते हैं, वल्लभाचार्य आदि और तरह मानते हैं, गीता प्रेस कुछ और तरह मानता है, ऐसे भेद है। भक्ति योग में सब एक हो जाते हैं क्योंकि सर्वोपरि परमात्मा है और परमात्मा का अंश जीव है। उस परमात्मा की दो प्रकृति है, अपरा और परा। ये 7वें अध्याय शुरू होता है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, अंत में 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं, बीच में 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, ऐसा श्री मधुसूदनाचार्य मानते हैं। तो बात कुछ अंश में ठीक भी है। पहले में कर्मयोग का विवेचन हुआ है, उतना अंत में ज्ञान योग का विवेचन नहीं हुआ है। तो ज्ञान योग का विवेचन 6 अध्यायों में कम हुआ है, उसकी अपेक्षा कर्मयोग का पहले से 6 अध्याय में ज्यादा हुआ है, परंतु भक्ति योग का 7वें से 12वें तक अच्छा विवेचन हुआ है। उस 7वें अध्याय में यही बात भगवान ने कही है कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रश्मधा अपरायम। ये अपरा प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। इससे अन्य है वो परा प्रकृति है भगवान की, जिसको जीव भूता वो जीव कहते हैं जिसका नाम। और ये दम धार्य दे जगत, जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है वो जीव है, वो मेरी परा प्रकृति है। अपरा परा दो प्रकृति बता, ये तो योनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी है सब में अपरा और परा प्रकृति है। इसमें चेतन अंश है वो परमात्मा का है और जड़ अंश है वो प्रकृति का है। ऐसे सब जीव है जिन दो प्रकृतियों से ही है। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। मानो मेरे से संसार उत्पन्न होता है और मेरे में लीन हो जाता है, ऐसे भगवान अपने को विशेषता से बात कही। इस 7वें अध्याय में भगवान ने एक बहुत विलक्षण बात कही है नए ढंग की। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मधाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तस्रुं, ये भगवान के समग्र रूप का वर्णन करते हैं। भगवान के साकार निराकार सगुण निर्गुण दो भुजी चतुर्भुजी सहस्रभुजी विराट रूप, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। इसमें समग्र रूप कहा भगवान ने। गीता भर में समग्र रूप पहले आया है तो कर्मों का आया है, समग्रम प्रविलीयते, कर्म सब ही यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्मों के विशेष में समग्र आया है। पर सातवें अध्याय में जो कि छह अध्याय में नहीं आया है, इस अध्याय में समग्रम स्वरूपम माम, मैं मेरा जो स्वरूप समग्र स्वरूप है वो तेजे तू जाने ऐसे मैं कहूंगा। तू तो समग्र रूप को जान जा, मैं अशेषता से कहूंगा, बाकी न रख करके कहूंगा, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसमें यह तीन प्रकृति, दो प्रकृति बता रही, एक अपने को बताया, मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, मेरे से अगाड़ी कोई नहीं है। अपरा प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति चेतन है, और इन दोनों से संपूर्ण जगत बना हुआ है। सब जीव है उनमें परापरा दोनों प्रकृति, सबका कारण मैं ही हूँ, आखिरी चीज है, आखिरी मैं हूँ। ऐसे भगवान ने भक्ति का विवेचन किया। अब एक बात और मैं कहता हूँ, उधर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये साथ साथ रहते थे, भागवत माया है, सैया सनातन विकथन भोजन आदि श्री क्या ध्वज ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सखेव प्रिवत्तर सर्वम से महान महितया कुमते रघुमि। तात्पर्य है कि हम दोनों साथ में रहते, ऐसी मित्रता थी। भगवान के परलोक जाने पर, यहाँ से अंतर्ध्यान होने पर अर्जुन ने कहा है कि मेरे साथ खेलना कूदना सहना साथ रहना सोना बैठना मेरे साथ हरदम रहता और रहता और मित्रता थी आपस में समान रीति से। परंतु मैं विशेष समझ नहीं सका इतना भगवान को, क्योंकि समान रीति से रहते मित्रता थी आपस में, और गीता ये मित्रों की गोष्ठी है, अपने आपस की बातचीत है गीता। तो उस गीता में भगवान ने अपने को खोल कर कहा, तो जब तक अर्जुन शरण नहीं हुए तब तक भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया, साथ में रहते हुए भी। और जब अर्जुन शरण हो जाते हैं, दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ सीता यस्येयस्या निश्चितं रूहि तन्मे शिष्यस्तेह साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। ऐसे शरण नहीं होने पर नहीं कहा, शरण होने पर भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। और एक विचित्रता ये है कि अंत में भगवान ने आज्ञा दी कि माम एकम शरणम ब्रज। अब जैसे श्लोक कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरण तो पहले ही अर्जुन हो जाते हैं, फिर ये शरण होने की बात क्यों कहते हैं? तो शरण होते हैं सातवें श्लोक में, और आठवें श्लोक में कहते हैं कि मेरे को राज्य का स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मेरे को इंद्रियों से सुखाने वाला शोक दूर नहीं हो सकता। ऐसे अर्जुन कह करके फिर नौवें श्लोक में न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कहकर चुप हो गया। तो भगवान शरण तो हुए और शिक्षा दीजिए कह दिया, और भगवान के बिना बोले ही निर्णय कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये भगवान को बात बहुत बुरी लगी। तू कहता है त्वाम प्रपन्नम माम शादी, आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए, और मैं बोला ही नहीं पहले कि युद्ध नहीं करूंगा। तो तीसरी बात यहाँ कौन सी, युद्ध करना न करना दो ही तो बात है, ऐसे ने एक निर्णय कर दिया। तो तमु आचार ऋषि कैसा प्रसन्न भगवान हंसते मुस्कुराते हुए बोले, क्या ये बचपन की बात करता है, अभी भी कहता है शिक्षा दीजिए, शरण हूँ और अब कहते युद्ध नहीं करूंगा। जब तू मेरे शरण है तो क्या करेगा न क्या नहीं करेगा, ये तेरे हाथ की बात थोड़ी है। तो वास्तव में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि यथेष्टसि तथा कुरु, 63वें श्लोक में, तुम्हारी जैसी मर्जी आओ जैसे करो। ये बात यहाँ कहने की थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरी मर्जी आओ जैसे कर, ऐसे कह देना चाहिए तो सीधे अवसर था, परंतु भगवान की बहुत विशेष अपनापन की कृपा थी, इस वास्ते ऐसा जवाब नहीं दिया भगवान ने, मुस्कुराए हंसे, परंतु उपदेश शुरू कर दिया। उपदेश करते करते 18वें अध्याय में पहुंचे, जब सर्व कर्मा न्यपसदा कुर्वाणो मद विपाश्रय, 56वें श्लोक से 66वें श्लोक, आप साधक संजीवनी देखें तो 18वें अध्याय के 56 से 66 तक 11 श्लोकों में भगवान ने बहुत विशेषता से भक्ति का वर्णन किया है, बड़ा विचित्र ढंग से किया है। वो विचित्र ढंग से करके और फिर कहा, यदि अहंकारम आश्रित्य न योज से इति बन्य से, न योज से वैसा वैसा पद भगवान के मानो खटक गया, इस वास्ते कहता है अहंकारम आश्रित्य, तो कहता है कि मैं आपके शरण हूँ, ये शरण मेरी नहीं है, ये अहंकार का आश्रय है, अहंकार के वशीभूत, और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अहंकार का आश्रय है, मेरा आश्रय नहीं है, मिथ्या व्यवसाय जिससे ये निश्चय तेरा झूठा है, तो युद्ध करेगा, करना पड़ेगा, क्षात्र धर्म है, युद्धे चापि पलायनम दानवीश भाव, क्षात्र कर्म स्वभावजम, स्वाभाविक तेरा धर्म है, अभी मेरे सामने कहता युद्ध नहीं करूंगा, पर तू परवश होकर अवश होकर प्रकृति के वश होकर प्रकृति युद्ध करेगा, और मेरी बात नहीं सुनागे तो पतन हो जाएगा तेरा, ऐसे भगवान ने धमकाया। धमकाने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं, तब फिर भगवान ने एक बहुत विचित्र बात कही 61वें श्लोक में, कि वो ईश्वर जो सर्वभूत, ईश्वर सर्वभूतानां निर्देश त्रिश्रुति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सबके हृदय में ईश्वर है, तमेव शरणं गच्छ उसी शरण जा। तो भगवान पहले तो अर्जुन कहता मैं शरण हूँ, और नहीं उसे कहा, फिर समझाने पर भी नहीं माना, तब कहा कि जो ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी रूप से, उसके शरण जा, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम, तो परम शांति की प्राप्ति हो जाएगा, शाश्वत पद प्राप्त हो जाएगा, उस ईश्वर की शरण जा। इतने पर भी नहीं बोले, तब कहते हैं इति ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्य तरंग मया, मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तेरे को कह दिया, अब विमर्श अशेषेण, इतने सब का विचार करके यथेष्टता गुरु जैसे मर्जी हो वैसे कर। जब ये बात कही तो अर्जुन घबराए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, तेरी मर्जी आ जैसे कर, तो मैं तो आपके शरण होता हूँ, मेरी मर्जी से कर तो आपको पूछता ही क्यों, तो भगवान मेरा त्याग करते हैं। तब अर्जुन घबरा गए, तो घबराया वो देखकर भगवान कहते हैं सर्व गुहितम भूय श्रृंगे वर्मम वच, गुह्यात गुह्यतरम तो कह दिया, पर सर्व गुह्यतम अब बात मैं कहता हूँ, अब सुन। तो ये 64वां श्लोक होता है सर्व गुह्यतम, तो सर्वगुह्यतम पद एक बार ही आता है भगवद गीता के 700 श्लोकों में, सर्वगुह्यतम, अभी गुह्यात गुह्यतरम मया सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढ़ मित्र, तू मेरा अत्यंत प्यारा है, दृढ़ मित्र है, तथो वक्ष्यामि तेरे हित की बात कहूंगा, वक्ष्यामि हितगाम्या, हिति कामना से कहूंगा, ऐसा कहकर मन मना भव, ये 65वां कहा और सर्वधर्म 66वां कहा, तू मेरी एक शरण आया, तू क्यों घबराता है, क्यों इस विचार करता है, इस वास्ते दोबारा ये शरण होने के लिए भगवान ने कहा। वो शरणागति पूरी अर्जुन ने की नहीं, इसलिए ये कहा साहब माम एकम शरणम ब्रज, के ब्रज में आश्चर्य आता है, माम शरणम ब्रज कह देते, माम एकम शरणम ब्रज, क्या भगवान 5-7 थे, जिसे एक की शरण आ जा, मेरी एक की शरण आ जा, तो इस ये तात्पर्य नहीं है कि भगवान 2-4-5 हैं, एक का मतलब है अनन्य शरण, तू दूसरी शरण मत ले, प्रकृति के शरण है, अपने कर्तव्य के शरण है, और अभी अहंकार आश्रित अहंकार का आश्रय लिया तो अहंकार के शरण हुआ, इन शरणों को छोड़कर केवल मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन के पाप का ही बड़ा भय था। मैंने पहले भी कहा था कि अर्जुन युद्ध करने मरने से नहीं डरता था, मारने से डरता था। गुरुजनों को मारूंगा तो मेरे को बड़ा भारी पाप लगेगा, पाप में वह श्रेय दसमान अर्पिता रातता ही ना, युद्ध में इनको मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। एक विचित्र बात और हुई, भगवान ने कहा था तुम एवं धर्मम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तन से हित्वा पाप मवाप्स्यसि, तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता पाप आसमान तो मेरे को युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा। तो महाराज पाप से छूटने का उपाय सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ जया जयो तथो युद्धा युद्ध नहीं पाप हो, इस पाप नहीं लगेगा। तो परसों ये बात कही थी कि केवल मारने से पाप नहीं लगता है, भीतर के भाव के अनुसार डॉक्टर दृष्टांत कर कहा था। तो मनुष्य समझता है मारना ही पाप है, मारना पाप है, कब जब जानकर हम किसी को मारते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक आया है कि जो अराजकता हो जाए, राज कोई रक्षा न करे और चोर डाकू कोई हत्यारे आकर के मारने लगे, धन आदि लूटने लगे, बहन बेटी को हाथ डाल के ले जाए, ऐसा करे तो उस समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र चारों का क्षात्र धर्म होता है, अपने जन धन की रक्षा करने के लिए युद्ध करे, उसमें भी मर जाए तो उसको पाप नहीं लगता जो डाकू और मारने लगे। तो क्षात्र धर्म तो ऐसा है, सबका है वहाँ क्षात्र धर्म, तो उनको भी पाप नहीं लगता। पर क्षत्रिय है और न्याय युक्त बात है, अर्जुन दुर्योधन ने कह दिया कि मैं दूंगा नहीं जमीन तेरी, और ऐसे युधिष्ठिर महाराज के न्याय से प्राप्ति होती है। तो आपसे आप प्राप्त हुआ है युद्ध, तो ऐसे समय में युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। परंतु पाप लगने में कारण क्या है कि स्वार्थ बुद्धि, अहम अपने में अभिमान हो और कुछ लेने की इच्छा हो, इस भाव को लेकर करता तो पाप लगता है। उसमें नन कर से पाप लगे नहीं, मामूली बातों से पाप लगता है। स्वार्थ में और अभिमान में आकर करते हैं तभी पाप लगता है। स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार न्याय युद्ध करते हैं और सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में समान, न हर्ष होता है न शोक होता है, न प्रसन्न होती है न दुख होता है, समान रहकर युद्ध करता है। मैंने प्रश्न बताया कि जैसे ऐसे भी न हो ऐसे भी न हो, ऐसी समता रखकर युद्ध करो, फिर युद्ध का पाप नहीं लगता। इसका तात्पर्य अर्जुन को पाप लगता है युद्ध करने से, वहां मौका युद्ध का था, और आप अपने गृहस्थ में रहते हुए अगर समता रखते हुए करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो कोई पाप नहीं लगता है। अब वो पाप से डरता है, इस वास्ते माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे शरण हो जा, मैं सब पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो ज्ञान मार्ग वाला तो ते प्राप्नवन्ति माम एव सर्वभूते तीरथा, मेरे शरण होते हैं माम, और भगवान शरणागत के लिए कहते हैं कि पापेभ्यो अहं मोक्ष, मैं पाप से मुक्त करूंगा। तो ज्ञान योगी है वो स्वयं अपना उद्धार करता है, और भक्ति योगी है वो भगवान पर अपना सब कुछ भार छोड़ देता है। साधारणतया इसका उदाहरण देने के लिए कहते हैं कि जैसे बंदरी का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है, तो बंदरी का बच्चा तो माँ को खुद पकड़ता है और बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, उसको माँ ही पकड़ कर ले जाती, कहीं ले जाना हो तो यहाँ से उसे पकड़ लेती है, वो तो अपना पैदा ऐसा कर देता है, वो जहाँ ले जाना वहाँ ले जाती है। तो ज्ञान योगी है बिल्ली के बच्चे नहीं, वे है बंदरी के बच्चे, जो आप स्वयं अपना उद्धार करते हैं, पकड़ते हैं, और भक्त है वो है बिल्ली के बच्चे की तरह, अपने खुश नहीं भगवान ही करे। इस वास्ते गीता में तीसरे अध्याय में दो निष्ठा बताई है, लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगिना। तो ज्ञान योगी कर्म योगी की निष्ठा बताइए, तो भक्ति की निष्ठा नहीं बताइए, भक्त की खुद की निष्ठा नहीं होती, भगवान बोलो भगवान पर छोड़ देता है, मैं भगवान का हूँ, ये भक्ति की खास बात है। मैं अपने कुछ भी करने वाला नहीं, अभिमान नहीं, कुछ नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही। इसमें पापों को दूर करना पड़ता नहीं, अपने को भगवान के शरण हो जाता है। उसकी तो यही बात रहती है कि भगवान से विरुद्ध कोई काम मैं न करूं, भगवान के अनुकूल बन जाऊं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूं, जो कुछ करूं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बच्चा माँ के शरण रहता है, माँ माँ पुकारता है और माँ का ही आश्रय रखता है, और माता की जैसी मर्जी हो वैसे करे। वो चाहे कुएं में भी रख दे तो बच्चा क्या कहता है, वो समझता ही नहीं उस। तो बच्चा तो संवेदनशील पूरा होता है, ये समझदार पूरा होता है, इतना फर्क है इनमें। ये समझ करके भगवान का शरण लेता है कि हमारी चिंता है ही नहीं, अब केवल भगवान के शरण हो गया। ये बात अब इसमें एक बात समझने की है कि जैसे विवाह होता है, जैसे कोई शिष्य होता है, जैसे कोई किसी दूसरे माँ बाप के गोद चला जाता है, तो उसका क्या काम होता है। विवाह होने पर कन्या जब पिता सौंप देता है, कन्या दान कर देता है, तो वो पति की हो जाती है, पति का एक गोत्र उसका गोत्र हो जाता है, उसके जन्म का गोत्र पिता का गोत्र नहीं रहता, गोत्र भी उसे मिला देती है, और वे पति पत्नी दोनों मिलकर एक ग्रस्त होता है, वो दोनों एक कहलाता है। एक मर जाए तो वो आधा ग्रस्त हो जाता है, तो इस तरह से वो अपने आप को मिला देती है। तो उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता, सब कुछ करती है। ये दो बात समझने की है। शरण होने पर भगवान का संबंध लगने के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। उस स्त्री को अमुक काम करूं तब तो पति की हूं, और न करूं तो नहीं हूं, ये होता ही नहीं कि पति की हूं ही मैं। तो करना किसके लिए के? पति का होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और घर का धंधा सब करती है। पति का जो घर है उसके सब तरह की सार संभाल करना, सब काम करना, रात दिन मशीन की तरह काम करती है। तो करना कुछ नहीं है, क्या अपने लिए कुछ नहीं करना है, पति का काम करना है, पति के धर्म का पालन करना है, पति के कर्तव्य का पालन करना है, पति का जो हुक्म है, आज्ञा है, उनकी प्रसन्नता है, उसकी अनुकूलता वो करना है। ऐसे अपने आप को छोड़ देती है, सब कुछ करती है, तो अपनी चिंता नहीं होती। आजकल तो लड़का लड़की सगाई होने पर भी साथ में खेलते हैं, पहले ये दुर्व्यवहार पहले नहीं था, ये देव पाप की बात है। ब्याह होने पर ही संबंध होता है, छूना होता है, पहले नहीं, ये अपने अनादिकाल की रीत है। तो दूसरे गांव का लड़का है जिसका साथ खेलने में भी कभी नहीं हुआ जन्म भर में, और वो पहचानती भी नहीं, ना वो अपनी पत्नी बनने वाली उस कन्या को जानता है, ना कन्या जो पति बनने वाला है उस वर को जानती है, अब उसमें पहचान नहीं है। अपरिचित के साथ जब संबंध कर देती है, कर देते हैं माता पिता, तो वो उसकी हो जाती है, उसकी चिंता नहीं होती। किसी कन्या ने माँ से ऐसे नहीं कहा कि माँ मैं अपरिचित घरों में जाती हूँ, अपरिचित परिवार है, हाथ पकड़ने वाला भी अपरिचित है, थोड़ा आटा तो दे दे, रोटी बनाऊंगी खाऊंगी, कहा। उसके मन में आती नहीं कभी कोई चिंता अपनी आती नहीं, कपड़ा कहाँ पहनूंगी, रहूंगी कहाँ, खाऊंगी क्या, पीऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, खास के अन्न जल वस्त्र और मकान, ये खास निर्वाह की चीज है, इन चीजों के लिए उसे कन्या के मन में आता ही नहीं। जब एक पति हो मरने वाला, मर भी सकता है, वो मारपीट भी कर सकता है, वो त्याग भी कर सकता है, वो साधु सन्यासी भी हो सकता है, इतनी जोखिम होने पर भी कुछ नहीं कहती, ना तो भगवान मरते हैं, ना साधु सन्यासी होते हैं, ना उसका त्याग करते हैं, ना वो दुख देते हैं, वो तो सदा जीव मात्र के सुहृद है, प्राणम सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद है। अब उसके शरण हो जाए तो चिंता क्या, तो शरणागत के चिंता मिट जाती है। जितना वो शरण लेता है भगवान का उतनी चिंता अपनी नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। भगवान के शरण होने पर भक्त कहता है कि चिंता तो महाराज आपको होगी, जैसे ब्याह करने पर लड़के की चिंता पति करता है अथवा पति के माँ बाप करो, वो चिंता नहीं करती। जो शास्त्र को शरणो लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजराज। नदी जोर से आती है तो बड़ा बलवान हाथी भी उस बाढ़ में उथल पुथल बह जाता है, पर छोटी सी मच्छी पानी के सामने बहाव इधर आ रहा है उस सामने बड़ी तेजी से जाती है, बहाव नहीं ऊपर से धारा गिरती है, उस धारा धारा पानी में ऊपर चढ़ जाती है मछली। तो मछली के लिए जल मना नहीं करता, जैसे कैसे घूमो कब क्यों, मछली का सहारा जल ही है। जल से बाहर हो जाए तो तप करके मर जाती है। ऐसे जिसने शरण ले लिया वो बुढ़ा भगवान के दरबार में भगवान की सृष्टि में भगवान के यहाँ खुला विचरता है, उसको अपनी चिंता कोई नहीं है, उसके आश्रित रहता है, परंतु जल से बाहर नहीं जाती मछली। ऐसे पति के हुक्म से पति के आज्ञा से पति के मन से बाहर नहीं जाती, इतना काम है। तो जो को जाको शरणो लियो ताका ताकि लाज, उल्टे जल मछली चलर बेहोजत गजराज। इस वास्ते भगवान ने कहते माँ सोचा तू शोक मत कर। अर्जुन ने ये बात कही थी कि महाराज देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, पृथ्वी का राज्य तो क्या है, शोक दूर नहीं हो सकता। शोक इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम, और आरंभ करते ही अशोच्यानंद शोचस्तम, शोक तू मत कर, तैने सोच किया है न सोच करने का शोक किया है। और गतास में पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते, मर जाए उनके लिए भी शोक नहीं करते, जीते हुए का शोक भी नहीं करते। गतासुन अगतासुन से नान सोचती पंडिता, पंड्या वाकार से भाग पंडिता ही कहता है। और शोक करता है और शोक नहीं करते जीते हुए अगर मरे हुआ का, तो कोई कहते भाई जीते हुए का शोक कैसे करते हैं, मरे हुआ तो शोक होता है जीते हुए का, अरे ज्यादा शोक तो जीते हुए के होता है, मरने वाले को तो मरने वालों को लेकर चिंता करते हैं, जीने वाले की रोटी की कपड़े की मकान की रहने की उनकी प्रसन्नता की सब तरह की चिंता होती है जीते हुए को, तो जीते हुए की चिंता ज्यादा होती है, मरने की चिंता तो अभाव हो गया ऐसी चिंता होती है। परंतु पंडित होते हैं वो चिंता नहीं करते, तो समझदार चिंता नहीं करते। इस वास्ते यह कहा कि हम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, माँ सोच शोक मकार शोक मत कर। माँ सोच दो बार कहा, एक सोलहवें अध्याय में कहा है कि अभिजातो से तुम देवी संपत्ति को प्राप्त होता है, इस वास्ते शोक मत। माँ सोच संपदम देवी अभिजातो से पांडव, तो ये साधन के विषय में शोक मत कर और वहाँ सिद्धि के विषय में शोक मत कर। साधन भी भगवान कराते हैं और साध्य की प्राप्ति भी भगवान कराते हैं। मत प्रसादा तरीशे सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीशे से, और मत प्रसादा वाप नोती शाश्वतम पद्म व्ययम। साधन में जितने विघ्न होते हैं उन विघ्नों से भी रक्षा मैं करूंगा और मेरी प्राप्ति भी मैं कराऊंगा, तू शरण हो जा, तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान ने शरण होने की आज्ञा दी अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि महाराज, और भगवान ने पूछा गीता पूरी सुना करके पूछा, कच्ची दे तो स्वतंत्र पार्थ तो एकाग्रण से था प्रधानंदन, तैने एकाग्रता से मेरी गीता सुनी, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोह नष्ट हो गया, गीता सुनी अगर नहीं सुनी ये बात नहीं कही, मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हो गया तो गीता सुन लिए गतार्थ हो जाता है सोते ही, क्यों गीता सुनेगा तो मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो गया तो गीता तेने सुन ली, पर ये आशय नहीं है अर्जुन का। अर्जुन का कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, परंतु गीता के सुनने से मोह नष्ट नहीं, मोह नष्ट हुआ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नष्ट प्रसादात, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ, अपनी पंडिताई से नहीं, आपके सुनने से मनन किया और उसी तरह से मैंने जीवन बनाया हो और मेरा मोह नष्ट हुआ, ऐसी बात नहीं है। नष्ट मोह स्मृति प्रसादान मैं, अब स्थितोष निगत संदेह, अब संदेह रहित हो गया। ये जो बात थी पहले कि हम जी हम युद्ध करें कि न करें, एक बात युद्ध करने पर जीत होगी हार होगी वो बात, ये संदेह था अर्जुन के मन में। हाँ। अपने घर में तो गर्भपात मत करो, अहिंसा परमो धर्म है। नहीं क्यों मारना, क्यों मारना पड़ता है? हम लोगों को पैसे जीते हैं, हम मारते नहीं है, न मच्छरों को मारते हैं, न मक्खियों को मारते हैं, न कीड़ी को मारते हैं, न मुकड़ों को मारते हैं, न चिड़चिड़ा को मारते हैं। ये दवाई से मारने का रिवाज कितने दिनों से चला है आप बताओ? पहले मारते थे क्या? हमारे जन्म के समय कीड़ा मारते थे? युद्ध के समय तो कहते नहीं करूंगा, यह क्या बोले करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, युद्ध करूंगा तो भी अहंकार का आश्रय है, युद्ध नहीं करूंगा तो भी अहंकार का आश्रय है। अब क्या करेगा कि मेरे को पता नहीं, आप कहोगे जैसे करूंगा। इसके बाद भगवान उवास नहीं है, गीता समाप्त हो जाती है, करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो शरणागत के लिए आज्ञा पालन है, आज्ञा समनस साहेब सेवा, भगवान की आज्ञा न हो वो काम हम कभी नहीं करेंगे, क्यों हम भगवान के शरण हो गए। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार जो वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, उसके अनुसार स्त्रियों का धर्म है, पुरुषों का धर्म है, बालकों का धर्म है, जवानों का धर्म है, बूढ़ों का धर्म है, रोगी का धर्म है, निरोग का धर्म है, ये धर्म है अपना कर्तव्य। तो धर्म रहित गाढ़ा कर्तव्य रहित, कर्तव्य रहित तो पागल होता है, कर्तव्य तो सबका होता है, पशु पक्षियों का, वृक्षों का तक होगा, जो करने में कुछ भी समर्थ नहीं है, करते नहीं है उनका भी, और पशु पक्षियों पर करने का धर्म होता है। तो करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वही करूंगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि धर्म की मुख्यता नहीं है। अब अर्जुन धर्म के लिए निर्णय नहीं करता है, आप कहोगे जैसे करूंगा। तो न योद्धे को उठाने का ये शब्द है करिष्ये वचनम तव, और ऐसे किया भी। कर्ण का युद्ध हुआ अर्जुन के साथ, अर्जुन का युद्ध हुआ कर्ण के साथ, इनके आपस में बड़ा द्वेष था, एक एक को मारना चाहते थे। कुंती माता ने एक बार कर्ण के सामने जाकर के बात कही, कर्ण का नियम था जब ये भगवान सूर्य की उपासना करता उस समय में कोई जाकर के उपासना करने पर जो मांगे वो दे देता था, कर्ण त्वचम त्वचा उतार कर दे दी, कुंडल काट करके दे दिया, त्वचा उतार करके दे, चमड़ी उतार दी अपनी। उस समय में कुंती ने जाकर कहा कि कर्ण तू मेरा बेटा है, उसे कहा कि तू माँ कैसी जो मेरे को जन्म देते ही तेने मदी में बहा दिया, तू माँ है, परंतु माँ है तू, कहती है मैं भी मानता हूँ, क्या चाहती हो? कि मैं तेरे से 5 बेटा चाहती हूँ, तुम हमारे बेटों को मारना मत, तो माँ तेरे को 5 बेटा दिया, अर्जुन और हम लड़ेंगे आपस में, अर्जुन अगर मर जाएगा तो मैं तेरा बेटा रहूंगा, नहीं तो मेरे मार देगा तो तुम्हारे 5 बेटे रह जाएंगे। तो ये 5ों रहे कायम, तो ये कुंती को भी वरदान दिया कर्ण ने। कर्ण बड़ा विलक्षण पुरुष था, बड़ी वीरता है इसकी, चंडाल चौकड़ी में होते हुए भी ये पाप कपट लखा जलाना आदि पापों में ये समत नहीं होता था। तो ऐसा कर्ण था। अब कर्ण की बात आई तो कर्ण के साथ में अर्जुन का युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था तो कर्ण को बड़ा ही अस्त्र शस्त्रों में तेज था, कर्ण मामूली मनुष्य नहीं था, साक्षात सूर्य का पुत्र था, बड़ा शूरवीर था, परंतु कपट से पढ़ा परशुराम जी से इस वास्ते उन्होंने साफ दे दिया कि तेरे शत्रु के सामने तू विद्या भूल जाएगा। और एक गाय मर गई थी अनजान पने में, तो पृथ्वी में उसने साफ दिया कि पृथ्वी तेरे चक्कों को पकड़ लेगी, तो युद्ध करने लगा तो चक्का धस गया जमीन में, तो अर्जुन कर्ण नीचे उतर करके और सबके को निकालने लगा। उस समय में भगवान वो अर्जुन बाण से नारा छोड़ बंद कर देता है। भगवान ने क्या कर रहा है, बाण मारो बाण। तो वहां कर्ण कहता है कि अर्जुन तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों के मर्म को जानते हो, तो शास्त्र की आज्ञा है और शस्त्र चलाने वालों का कायदा है कि रथी रथी के साथ लड़े, पैदल पैदल के साथ लड़े, घुड़सवार घुड़सवार के साथ, हाथी सवार के साथ लड़े, और मैं जमीन पर खड़ा हूँ, तुम युद्ध पर रथ पर बैठा है, मेरे बाण मार रहा है, ये धर्म सम्मत बात नहीं है। तो अर्जुन कुछ विचार कर भगवान कहते मारो बाण, तो बाण लग गया। तो ये जो बात करीशी वचनम, तब जब भगवान की आज्ञा हो गई तो उसने बाण मारा। वहां सर्वधर्मान परित्यज, धर्म की तरफ देख रहे नहीं, धर्म तो नहीं है, परंतु तो भगवान कहते हैं करो, जब तो मारा बाण, तो धर्म को छोड़ करके उसने काम किया। अब बाण मारा तब तो अर्जुन कर्ण बोलता है कि तू धर्म विरुद्ध बात करता है। तब भगवान बोले कि शास्त्र में लिखा है कि छह बात करे, अग्नि देय विष देय जो क्षेत्र दार धनहार बहुरी पकार शस्त्र कही गई अवैध वैध खटकार, छह काम करने वाले अवैध भी, अब एक ब्राह्मण मायांतम शास्त्र शास्त्र विरुद्ध ब्राह्मण भी आ जाए, अतः आत्मदायी पड़ा काम करे तो मारने लायक होता है। तो छह काम क्या है, अग्नि लगा दे, विष दे दे, और जमीन हड़प ले, और उस स्त्री को चुरा ले, और शस्त्र अगर सामने ले जाए, अग्नि दे या घर दे ये जो विष दे ये जो क्षेत्र दार धनहार धन ले, और शस्त्र लेकर मारने का जाए। तुमने छऊ के छऊ काम किए, विष ने तुमने दिया, अग्नि तुमने जलाई, और जमीन हड़प ली कपट का जुआ खेल करके, और स्त्री का नगर करना चाह सभा के बीच में दृढ़ उठा करके द्रौपदी को ले गया, और शस्त्र अस्त्र लेकर तुम आगे युद्ध करने के लिए, और विशेष कर्ण सुन तू बात, अभिमन्यु को तुमने छह मारुतियों से मिलकर के मार दिया, एक एक शस्त्र के साथ एक युद्ध करे, उसमें युद्ध के नियमों को तुमने भंग किया, ऐसे आज ताई को किसी तरह से मार देना धर्मशास्त्र है। बोल क्या कहता है, जब मरने लगा तो धर्म को याद करता है, ऐसे धर्म रक्षा नहीं करता। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाला धर्म रक्षा करता है, और धर्म के त्याग करने वाला के धर्म खुद नाश कर देता है, और धर्म की दुहाई वही दे सकता है जो स्वयं धर्म का पालन करता है। तुम धर्म का पालन नहीं करता तो इसको कह नहीं सकता कि धर्म नहीं है, तुम धर्म का पालन करता है जो धर्म की बात कहता है। कर्ण चुप हो गया। अर्जुन ने देखा कि मैं अभी धर्म को अपने लेता तो अपने धर्म में तो धोखा खा जाता, पर भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो धर्मान परित्यज्य का तात्पर्य धर्म के त्याग नहीं है, धर्म के आश्रय का त्याग है। आश्रय मेरा देव, माम एकम शरणम व्रज, तुम जो धर्म के शरण होता है तो त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते, नौवें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं धर्म का आश्रय लेने वाले तो धर्म करके स्वर्ग में जाते हैं, सुख भोग कर खीरे को निमर्तम विशंति एवं धर्म धर्म त्रयी मनोपन्ना, तीनों वेदों के धर्म का आश्रय लेने वाले गतागतम जन्मते मरते रहते हैं। इस वास्ते धर्म का आश्रय नहीं, आश्रय मेरा लो। तो भगवान कहते माँ एकम शरणम व्रज, तो एक भगवान के चरणों के शरण हो जाए, तो अपने आश्रय भगवान का केवल भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग करना है, वर्ण धर्म का पालन करना है, आश्रम धर्म का पालन करना है, न्याय युक्त सब काम करना है, सत्यता पूर्व करना है, परंतु इन साधनों का आश्रय नहीं लेना है। इतना मैं जप करता हूँ, ऐसे धर्म का अनुष्ठान करता हूँ, कल्याण हो जाएगा, ये बात नहीं। भगवान की आज्ञा है अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, इस वास्ते भगवान की आज्ञा पालन कर रहा हूँ, मेरे धर्म को से नहीं, मेरे धर्म से कल्याण होगा, साधन से कल्याण होगा, जप से कल्याण हो जाएगा, तत्व की प्राप्ति मैं कर लूंगा अपने विचार से, ये कोई आश्रय नहीं है, केवल भगवान की कृपा से होगा। तो साधन भी भगवान की कृपा है और साध्य की प्राप्ति भी भगवान की कृपा है। इस वास्ते सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीशी से मेरे में चित लगाने से सब विघ्नों से भी मेरी कृपा से तर जाएगा और मत प्रसादात वो अब तो होती शाश्वतम पद भव्यम अविनाशी पद की प्राप्ति भी मत प्रसादात हो जाएगी। तो भगवान की कृपा से ये सब होता है। नौवा अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परियोपासते अनन्या एक भगवान के सिवाय कोई दूसरा मेरा नहीं है। जैसे मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो केवल भगवान का आश्रय है और मेरा कोई नहीं है। अपना शरीर भी नहीं है ये भी अपना नहीं है मन मेरा नहीं है बुद्धि मेरी नहीं है मैं अर्पित मनोबुद्धि मन बुद्धि भी भगवान के अर्पण कर दिया इंद्रिया भी मेरे नहीं है प्राण भी मेरे नहीं है अब मत चिंता मत गत प्राणा प्राण भी भगवदगत है। तत्कुरो यत करोश यदश यद जुहोश ददाश यद यद तपस्या कौन थे तत्कुरु सुम अदर्पण सब मेरे अर्पण कर दे। जैसे पत्नी अपने आप को अर्पण कर देती है इस तरह से मन में मैं तो भगवान का हूँ। अब उनके ये मैं करूंगा ये नहीं करूंगा ये बात आती ही नहीं भगवान की आज्ञा हो उसे करेंगे कि भगवान की आज्ञा का क्या पता लगे। तो भगवान ने जो आज्ञा दी शास्त्रों में गीता में कहा है वो भगवान की आज्ञा है। दूसरे भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान पर भगवत परायण होते हैं वे करते हैं वो भी भगवान की आज्ञा है और वे कहते हैं वो भी भगवान की आज्ञा है। गीता ने कहा यद आचरती श्रेष्ठ तत्व देवी दरोदर स यद प्रमाणं कुरते लोकस्त अनुवर्धते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं और सत प्रमाणु से यत प्रमाणं कुरुते वे जिसको कहते हैं ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसके अनुसार लोग बर्ताव करते हैं। तो भगवान का भक्त आदर्श होता है। हम कैसे आचरण करें तो महाजनो ये न गतः स पंथा श्रेष्ठ पुरुष जैसे करते हैं वो भगवान की आज्ञा है। तो शास्त्रों से भगवान की आज्ञा मिलती है संत महात्माओं के आचरणों से आज्ञा मिलती है और श्रेष्ठ पुरुषों के वचनों से आज्ञा मिलती है। श्रेष्ठ पुरुष जो भगवान के सर्वथा समर्पित हो गए उनके मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान के हो गए अब उनका वचन होगा भगवान का वचन ही होगा वहाँ अहंकार नहीं रहता है। जब तक अपना अहम मैं हूँ ऐसा रहता है तब तक क्षण पूरा हुआ नहीं और क्षण हो जाने पर अपना अहंकार नहीं रहता तो उसके द्वारा जो होता है सब काम भगवान की आज्ञा से ही होता है। इस वास्ते वो कहते हैं वो आज्ञा करते हैं वो आज्ञा है और शास्त्र कहता है वो आज्ञा है। तीन बात। चौथी बात एक कहावत है कि अगर से खुदा पहचानो तो भगवान की वचन क्या है कि अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित की बात करना सूर्यम सर्वभूताना। भगवान कहते हैं पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में 29वें में कि मैं संपूर्ण प्राणियों का सूर्य हूँ। सूर्य में मित्र में फर्क होता है। मित्र उपकार के बदले उपकार करता है और सूर्य उपकार करे चाहे अपकार भी करे तो वो तो उपकार ही करता है। जैसे बच्चा माँ के टट्टी फिर देता है पेशाब कर देता है थूक देता है तंग करता है तो भी माँ पालन ही करती है। ऐसे बिना कारण पालन करे माँ का अपनापन होता है मेरापन होता है। ये मेरापन तो नहीं है किंतु माँ की तरह पालन करते हैं भगवान। ये सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति स्वार्थ मिंत सकल जग माही स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान का भक्त ये बिना हेतु हित करते हैं दूसरा का हित ही हित करते हैं। विभीषण के लात मारी रावण ने नीति कही कि ठीक नहीं है तुम्हारा काम तो लात मारी उसे तो कहते आप पिता के समान है भले ही मोही मारा परंतु राम भजे हित हो ये तुम्हारा आपका हित तो राम जी के भजन से है। तो वहाँ भगवान शंकर कहते हैं उमा संत की यह बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। और जगह आया है कि वो संत होते कैसे होते इक्ष दल की तरह साठा होता गन्ना होता है ना तो गन्ने में जाकर पेड़ है खूब तो भी मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसा नहीं कि तंग करता है तो कड़वा निकल जाए, कड़वा है ही नहीं, निकले कहाँ से। ऐसे संत को तंग करते हैं, दुख देते हैं, तो उनसे मीठा ही निकलता है। इस वास्ते हनुमान जी महाराज ने कहा, इस हट कर यह पहचानी, रात्रि में घूमते हुए देखा तो विभीषण करवट बदलता है, तो राम 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 नाम भगवान का नाम लिया, कहती वो साधु है, इनसे हट कर ही हूँ पहचाने, इनसे पहचान करूंगा, क्योंकि साधु तो हुए न कार्य हानि, मैं गुप्त आया हूँ और गुप्त में पढ़ा प्रकट करना नहीं चाहता, परंतु साधु से कार्य हानि नहीं होती, उससे लाभ ही होता है, तो हेतु रहित कृपा करने वाले होते हैं संत और भगवान। तो भगवान के वे भक्त ऐसे क्यों हो जाते हैं कि भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान के शरण हो जाते हैं, इस वास्ते भगवान के गुण उनमें आ जाते हैं, अपना कोई अहंकार नहीं रहता, तो भगवान जैसे करवाते जैसे करते हैं वे कहलाते हैं, जैसा ही वे कहते हैं। इस वास्ते ये दो बिना हेतु हित करने वाले हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। तो भगत भगवान तो सूर्यदम स्वरूप भूता नाम लिखा है भागवत में, सूर्य सर्वदेही नाम, भक्तों के लक्ष्य में है कि वे सबके सर्वभूत ही दे रहता, प्राणी मात्र के हित में ही व्रत रहते हैं। ये दो बार आया, पांचवे अध्याय में बारहवें अध्याय में, दबंदे ब्रह्म निर्वाणम और ते प्राप्त होती मामेव कौन सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करना, अपने हित हित करना है, वो अहित करे तो वो करे, अपने अहित न अपने तो हित ही करना है, ऐसा स्वभाव भक्तों का हो जाता है। तो भगवान के शरण होने में भगवान के समान उसके भीतर गुण आ जाते हैं। भरतलाल जी जब भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, उस समय माताएं साथ में थी, कौशल्या केकई जी सुमित्रा जी ये माताएं भी साथ में थी, बड़े बड़े ऋषि उन्हीं थे, बड़े बड़े अहलकार साथ में थे। उस समय में निषाद राज गुह वहां गया है तो सबको मालूम दिया, मानो लक्ष्मण है ये, लक्ष्मण जी सब समझा उनको, वो लंबा पड़ के दंडोत करता है तो माताएं आशीर्वाद देती है, वो लखनलाल की तरह क्यों, लक्ष्मण जी से रात्रि का सत्संग हुआ था, उसमें वो उपदेश दिया, वो लक्ष्मण गीता कहलाती है तुलसी रामायण में। तो गुरु का अवतार होता है, जैसे पढ़ाने वाला होता है बालक को, तो पढ़ने वाले में पढ़ाने वाले का अवतार हो जाता है, जो उसका स्वभाव होता है, जो उसकी विद्या होती है, वो विद्या उसमें आ जाती है। ऐसे शरण होने पर भगवान का अवतार उसमें हो जाता है, शिष्य में गुरु का अवतार शिष्य में हो जाता है। ऐसी बातें कुछ देखी गई है कि वे जब आचरण करते हैं तो दूसरों को याद आती है, गुरु की, उनके गुरु की याद आ जाती है। तो गुरु के क्यों, गुरु का भाव शिष्य में आ जाता है, अवतार हो जाता है। तो इस वास्ते संत महात्माओं की कृपा से साधारण आदमी भी ऐसा विलक्षण हो जाता है, दूसरों को दिखने लगता है, उनकी याद आ जाती है। तो ऐसे तो उसमें शिष्य में उतर आते हैं, अवतार उसको कहते हैं जो नीचा उतरना है। कई लोग कहते हैं अच्छे काम करते करते श्रेष्ठ पुरुष हो जाते हैं तो उसको अवतार कहते हैं, वो अवतार वही है, वो उत्तार है, ऊपर को उठे हैं, वो है अवतार। तो वो है जो अपनी मर्यादा में जहाँ रहते हैं भगवत स्वरूप में, उसको छोड़कर साधारण मनुष्य बन जाए, ये अवतार होता है। तो गुरु महाराज अवतार लेते हैं शिष्य में, तभी तो पढ़ने वाला विद्वान बन जाता है। अगर गुरु उसमें प्रवेश न करे, अपनी विद्या न दे, तो क्या विद्वान बन जाएगा, नहीं बन सकता। ऐसे संत महात्माओं की कृपा से दूसरे संत हो जाते हैं। वात्सल्य एक प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम का विलक्षण एक बताया है। चार होते हैं रस भक्ति में, एक दासी रति, एक सखी रति, एक वात्सल्य रति, एक माधुर्य रति। भक्त होते हैं वो दास भक्त, भक्त होते हैं एक सखा रूप से भक्त होते हैं, एक वात्सल्य रूप से पालन करने वाले होते हैं, एक पत्नी रूप से होते हैं। ये चार रूप होते हैं भक्तों के। तो भक्तों के भक्त शरण हो जाता है भगवान के। तो भगवान की बात इसमें आ जाती है। तो वात्सल्य रस का बसरा, वात्सल्य वत्स होता है, वत्स से वात्सल्य बनता है, वत्स नाम है बसरे का, गाय का बसरा होता है। तो बसरे में क्या विलक्षण होता है, गाय में क्या विलक्षण होता है कि गाय का चारा है उसमें अगर गोमूत्र की गंध हो जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, गोबर की गंध हो जाए तो गाय सारा नहीं चरती। परंतु बसड़ा झलमता है तो मल भरा रहता है उस शरीर पर, उसको जीभ से चाट कर साफ कर देती। गोमूत्र और गोबर की गंध उड़े में चारा नहीं चढ़ती और उस बछड़े को चाट करके साफ कर देती है। अगर उस बछड़े को आप स्नान करा दो, धो दो साफ, नहीं चाटे तो गाय का दूध कम हो जाएगा। जो वो चाटती है गाय का दूध बढ़ता है। ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु खुश हो जाते हैं, वात्सल्य होता है, तो उसमें गाय का दूध शरीर में रहता हुआ थनों में आ जाता है, टपकने लगता है। ऐसे गुरु महाराज की कृपा आती है शिष्य में, प्रवेश कर जाती है सब की सब शक्ति, तो उसमें विलक्षण आ जाती है। ऐसे भगवान के शरण होने पर भगवान का साधर्म, भगवान की विलक्षणता, अलौकिकता, कृपालुता, दया, क्षमा आदि विचित्रता उसमें उतरी आती शिष्य में, तो वे गुण उसमें आ जाते हैं। जैसे कारागार में बंद है, कैद हो गई, और कैद हो गई उनके वर्ष भी इतना वर्ष ये कैद में रहेगा, कैद बोल दी गई है। पर राजकुमार है, राजा का बड़ा प्यारा पुत्र है, वो अगर जेल में जा और ज्यादा दुखी देगी तो छोड़ दे, तो कैसे छोड़ दिया, घबरा छोड़ दिया, अब आप कैद कर दो। अरे कैद क्या, तेरे छोड़ दिया, अब कैद क्या करूं मैं, मैं कैसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। ऐसे भगवान नहीं छोड़ सकते, भक्त छोड़ सकते, क्यों छोड़ दिया, मैं आगे दर छोड़ दिया, अब आप कैद कर दो, तो भगवान थोड़ी कैद कर दे पीछा, फिर नरकों में थोड़े भेज सकते हैं। तो ऐसे भक्तों के वश में भगवान हो जाते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन गए भगवान को निमंत्रण देने के लिए और दुर्योधन गया निमंत्रण देने के लिए। दुर्योधन राजनीति में बड़ा राजा वतन मोबरवीर का है, बड़ा राजनीति में कुछ था दुर्योधन। तो दुर्योधन देखा कि अपने पक्ष के तो अपने पक्ष में है ही, परंतु अर्जुन के पक्ष में है, दूसरे पक्ष में, उनको भी अपने पक्ष में कर लो। तो कृष्ण भगवान के पास रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन पहुंचा पहले, तो भगवान सोए हुए थे, सिरहाने सिंहासन पड़ा था, उस पर जाकर बैठ गए। इसके बाद अर्जुन पहुंचे तो वो पैरों की तरफ हाथ जोड़े खड़ा रहा, भगवान की नींद खुली, टेढ़ी नजर तो पहले ही हो गई। वो कहता है कि महाराज मैं पहले आया हूँ, मंत्र देने के लिए आया हूँ, आपका और अर्जुन का आपके साथ तो समान ही संबंध है, इस वास्ते संबंध के मन आते आप मेरी पक्ष में रहो। तुम अर्जुन, मैं भी इस वास्ते आया महाराज, मेरी पक्ष में आप रहो। तो भगवान कहते भाई बात ठीक है, तुम आए पहले और मिले अर्जुन पहले, तो तुम आए पहले इस वास्ते मेरे निमंत्रण का, आकर तुम्हारे प्रति तुम्हारा हक मेरे पर लगता है, सहायता करूंगा, और अर्जुन पहले मिला इस वास्ते अर्जुन की सहायता करूंगा। परंतु बात यह है कि मैं अपने दो भाग कर देता हूं, एक तो मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं एक पक्ष में मैं रहूंगा, दूसरे पक्ष में एक अक्षौणी हाथी घोड़े रथ पैदल चतुरंगणी सेना मेरी, वो एक पक्ष में रहेगी। ये दो पक्ष है, दोनों को मैं देता हूँ। इन दोनों में बात ये कि अर्जुन अवस्था में छोटा, अर्जुन छोटा है अवस्था में, दुर्योधन तुम बड़े हो, भीम के समान था ये, तो तुम बड़े हो। तो दो विभाग जहाँ किया जाता है तो पहले छोटे को अवसर दिया जाता है, ये मनावश ले ले, बची हुई आप चीज ले लो, दोनों में मर्जी अवश्य चीज ले लो। दुर्योधन देखा तो कुछ बुझाएगा ही तो, पर अर्जुन तो कहता है महाराज मैं तो आपको लूंगा। दुर्योधन बड़ा राजी हुआ, बहुत ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जिस शस्त्र लेकर कोई भोजन थोड़ा ही कराना है, वहां तो युद्ध करना है, कि मैं युद्ध तो करूंगा नहीं, तो आप फिर मैं क्या करूंगा, बोला नहीं मैं मर में जा रहा। अब एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन तो राजी हो गया, और अगर कहा कि आज अर्जुन के मित्र कृष्ण को मैंने ठग लिया, एक अक्षौणी सेना मैंने ले ली, तो कृतवर्मा सेनापति था यादव, वो पूरी पूरी यादवों की सेना अर्जुन के पक्ष में रही, भगवान के दुर्योधन पक्ष आ जाता है, तो दुर्योधन पक्ष में रही। अर्जुन को संसप्त गणों को मारने के लिए बड़ा युद्ध करना पड़ा है, बड़ी आफत आई है, भीमसेन ने तो कह दिया कि महाराज ये क्या किया, सांपों को जहर पिला दिया, इनको आपने सेना दे दी, उनको मारना कठिन हुआ है, परंतु रहे उसी पक्ष में ही। तो दुर्योधन के पक्ष में हो गए, अब भगवान रहे। तो दुर्योधन जब चला गया तो भगवान ने धमकाया, अरे अर्जुन मैं कहता दुर्योधन तुम ले रहे तो वो सेना ही लेता, मेरे थोड़े ही लेता, मैंने तुम्हारे लिए अवसर दिया था कि तुम सेना ले लो, पर तेरे क्या बड़ी भूल करी, सेना तुमने नहीं ली, मेरे को लिया। अरे मैंने कह दिया मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, तो फिर मेरे को क्यों लिया? कहते महाराज मेरे को युद्ध में संख्या नहीं बढ़ानी है, मेरे तो विजय करनी है, जहाँ धर्म होता है वहाँ आप रहते हो, आप रहते हो वहाँ विजय होती है, तो मैं तो आपको लेता हूँ। अरे मेरे से करेगा क्या कि मेरे बहुत वर्षों में मन थी ऐसे मनसा कि मेरे रथ को भगवान आके और मैं रथ ही बढ़ूं। आप शस्त्र दे लोगे क्या, साबुक और लगाम में नहीं लोगे, ये तो ले लोगे, तो भगवान खुश हो गए कि भैया तेरे ठीक किया, तो मैं शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन कहते महाराज मेरी बागडोर तो आपके हाथ में रहेगी, आप ले जाओ जैसे कराओ, आपकी मर्जी है, आपको सौंप दिया। तो स्वाधिमान तो हम प्रपन्नम शरण हो गया रे भगवान के, तो शरण भगवान के हो गया, अब संपत्ति थोड़ी लेता, भगवान के शरण होने वाले के लिए संपत्ति कोई चीज नहीं होती है, ये तो माया की चीज है। वो दुर्योधन उसको बड़ी समझता है, अर्जुन तो बड़ी समझता नहीं, भगवान को भी बड़ा समझता है। तो भगवान शस्त्र अस्त्र चलाते नहीं, अब शस्त्र चलाने नहीं प्रतिज्ञा करी थी। इधर भीष्म जी महाराज थे, भीष्म जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान को भगवत स्वरूप से कुंती भीष्म विदुर ये जानते, जैसा युधिष्ठिर अर्जुन इतना नहीं जानते जितना ये कुंती जानती थी। भीष्म जी महाराज जानते कि साक्षात परमात्मा है, माता कुंती जानती थी, बहुत थोड़े ऐसे थे जो कृष्ण को भगवान समझे। उस समय में भगवान को भगवान समझने वाले थोड़े थे, आज गए गुजरे जमाने में भी भगवान को भगवान मानते वालों की संख्या बहुत है, यद्यपि पूरी नहीं है वैसा भगवान मानते हैं, पूरे शरण नहीं होते हैं परंतु भगवान मानते हैं, उसमें नहीं मानते थे ये। तो भीष्म जी महाराज के सामने बात आई कि भगवान कहते मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। भीष्म जी ने कहे जो हरि हाथन शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आपके शस्त्र नहीं लेंगे, मैं शस्त्र आपको दिलाकर छोड़ूंगा, हाथ में आपको शस्त्र लेना पड़ेगा। प्रतिज्ञा करी भीष्म जी ने कि मैं शस्त्र ग्रहण कराऊंगा जो हरि हाथ में शस्त्र कहाऊं और भगवान के शस्त्र नहीं लूंगा। तो ऐसा घमासान युद्ध किया, अर्जुन कहते अर्जुन बाण मार दिए, देख भीष्म कितने बाण मार दिए, मेरा कवच तोड़ दिया है, लहू लुहान कर दिए है, छोटे छोटे बाण मार मार के मैं हाथों के अंगूठों के ऐसे मारे जिसे लगाम और साबुक पकड़ना मुश्किल हो गया है, ऐसा वो युद्ध कर रहा है, मर रहे क्यों नहीं, मारे क्या रथ भर दिया महाराज बाणों से, ये सोच नहीं कर सकता। भीष्म जी महाराज बहुत विचित्र वीर थे। तब भगवान उठे जो चक्कर लेकर के हाथ में और मारता हूँ कूदे, तो भीष्म जी आई आई महाराज आज ये आज त्रिलोकी में मेरा जश हो गया, मेरे ऊपर आपने शस्त्र उठा लिया, मैं तो कृतकृत्य हो गया, गिराइए मेरे को अभी से गिरा दीजिए मारिए। तो भगवान जैसे कि चले तो पिता पर गिर गया पृथ्वी पर, उसका तात्पर्य पृथ्वी कहती महाराज आपकी प्रतिज्ञा टूट गई तो पृथ्वी कैसे टिकेगी, तो बोले ये पीतांबर ऐसा कर दिया। फिर गए वहां पर तो चला शस्त्र चला, फिर अर्जुन दौड़े पीछे से, अर्जुन दौड़े तो अर्जुन ने पकड़ा, वो समझता पकड़ लूंगा, तो घसीट दे गए महाराज भगवान का, तो भगवान के बल के समान अर्जुन का बल था ही नहीं। फिर महाराज पिछा बैठ के दो बार हुआ, एक बार तो चक्र लेकर दौड़े और एक बार साबू लेकर दौड़े, ऐसे भगवान के शस्त्र ग्रहण करा दिए भीष्म जी ने। तो भगत की प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा दोनों हो जाए तो वहाँ भगत की हार होती है, भक्त की हार नहीं होती। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत देवता सब साक्षी है, तो भगत की आगाही और सबसे गयो जीत भगत से हारे और पदाता है। भगवान सबसे जीत जाते हैं पर भगवान से हारे भगत से हार जाते हैं। तो भक्त को तो भगवान भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतु संतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि। तो सर्वधर्मान भक्ति का वर्णन गीता में बहुत विलक्षण है, 9वें अध्याय में 18वें अध्याय में विशेषता है और ऐसे सब अध्यायों में भक्ति का वर्णन आता है। तो भक्ति की महिमा बहुत अधिक है। इधर कहते समय हो गया क्योंकि अब क्या करे, भक्ति में विलक्षणता क्यों है, जरा थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा थोड़ा ठहरे। आप जैसे अपने माता पिता को अपना मानते हैं, ऐसे भगवान को अपनी माँ मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, बाप मान लो, गुरु मान लो, बेटा मान लो। विश्वामित्र जी कहते मेरे चेला है, तो ऐसे कई माताएं भगवान को पुत्र मानती है, तो पुत्र की तरह ही मान लेते, राजी हो जाते हैं। तो ये संबंध अभ्यास है सबको, इस संबंध का अभ्यास है। वो ही भगवान के साथ कर दो, माताएं कहीं मेरा लड्डू गोपाल मेरा लाला है, तो हमारा गोदी में आ जा, खेलने लग जाए। यशोदा मैया बांधे दाम नहीं नाम नहीं बस दास, यदि यो भवपाश बंधम दाम नहीं वो वधु मेरे अपन बद्धा। नाम से संसार का बंधन टूट जाए, उसको यशोदा बांध देती है कमर में, तो दामद हो जाते, छूट नहीं सकते। तो ऐसे भक्तों के वश में होते आए भगवान।